महाबंध पुस्तक पहिली लेक्चर नंबर 4 ॐ नमः शिवाय ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् भूतबलिप्रणीतं तं बन्धतत्त्वप्रकाशकम् महाधवलविख्यातं महाबंधम नमाम्यहम्। देखना पड़ेगा। एडजस्ट करना है। हाँ, अभी MTNL पर लगा लिया है। ठीक है। आचार्य श्री भूतबलि भट्टारक द्वारा रचित यह महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जो षटखंडागम का यह छठा खंड है। इस पे कोई टीका नहीं है। ये तो मूल रचना है भूतबलि आचार्य की। पहले 5 खंडों पर तो हमने धवला टीका वीरसेन आचार्य के द्वारा रचित देखी थी। अब यहाँ हम ये छठा खंड पढ़ने जा रहे हैं। हम आए हैं पहली पुस्तक के पृष्ठ संख्या 17 पर। पहली पुस्तक में प्रकृतियों का ही वर्णन है, सब प्रकृति के बारे में। और शुरुआत में अभी ये तो मंगलाचरण के रूप में नमो जिनानम का अर्थ चल रहा है। उसमें हमने 27 सूत्र तक पढ़ा था। अभी 17 पेज पर 28 नंबर का सूत्र पढ़ने जा रहे हैं। नमो घोर गुणानम, अर्थ घोर गुण वाले जिनों को नमस्कार हो। ये घोर पराक्रम, घोर तप वगैरह जो है, वो तो उनकी अंतरंग में स्थिरता जितनी अधिक है, बाह्य तपों की अपेक्षा भी वो घोर तप करने वालों को यहाँ लिया है। और यह हर सूत्र में वो जिनानम वाली बात तो होती है, यानी ऐसे ही मुनिराज है। अभी वो तो अल्पकाल में मोक्ष जाने वाले हैं, संयमी है, भावलिंगी संत है। 29 नमो अघोर गुण ब्रह्मचारिणम, अघोर ब्रह्मचर्य धारी जिनों को नमस्कार हो। विशेषार्थ वीर सेनाचार्य कहते हैं, जिनमें तपो महात्म्य से मारी आदि रोग, दुर्भिक्ष, वैर, कलह, वध, बंधन आदि के प्रशमन करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। तप के प्रभाव से ये सब इसका शमन हो सकता है, शांत किया जा सकता है, वे अघोर ब्रह्मचारी है। नीचे देखो 3 नंबर का फुटनोट, ब्रह्मचारित्रम पंचव्रत समिति त्रिगुप्त्यात्मकम शांति मुष्टि हेतुत्वात्। शांति पुष्टि होगा ब्रह्म, यानी वो ब्रह्म क्या है, वो चारित्र है। वो कैसा है, 5 महाव्रत, समिति 3 और गुप्ति भी 3 है। समिति 5 है, गुप्ति 3 है। वो तो शांति की पुष्टि हेतु के लिए होता है। अघोराहा अंताहा गुणाहा यस्मिन, यानी अघोर अंत, अंत ही अर्थ होते गुण जिसमें होते हैं, तद अघोर गुणम, उसको अघोर गुण कहते हैं। अघोर गुणम ब्रह्म चरन्ति इति अघोर गुण ब्रह्मचारिणः। जेसिम तवो महाप्पेन, यानी तप के महात्म्य से। अभी जो हमने ऊपर अर्थ देखा था ना, वही मूल प्राकृत में बता रहे। मारी यानी वो, मारी यानी वो कॉलरा जैसे जो रोग होते उसको मारी कहते हैं। दुर्भिक्ष यानी दुकाल, दुष्काल, वैर, कलह, वध, बंधन, रोगादि पशमन, यानी उसको प्रशमन करने की शक्ति समुपन्ना उत्पन्न है जिनके, ते अघोर गुण ब्रह्मचारिणो ति उत्तम होती, उनको अघोर गुण ब्रह्मचारी कहते हैं। आगे ऊपर देखते हैं, हमने विशेषार्थ का एक पैराग्राफ पढ़ा था। अकलंक स्वामी राजवार्तिक में अघोर के स्थान में घोर पाठ मानकर यह अर्थ करते हैं, जो चिरकाल से अखंड ब्रह्मचर्य के धारक है और चारित्र मोह के उत्कृष्ट क्षोभशम से जिनके दुस्सपनों का विनाश हो चुका है, वे घोर ब्रह्मचारी है। तिलोय पन्नतिकार कहते हैं, जिस रिद्धि से मुनि के क्षेत्र में चोरादिक की बाधा, दुष्काल तथा महायुद्ध आदि नहीं होते। पहले वो तो जो होता है उसको प्रश्न करने की बात, यहाँ तो वहाँ उत्पन्न ही नहीं होगे, वह अघोर ब्रह्मचारित्व है। अथवा चारित्र निरोधक मोहनीय कर्म का उत्कृष्ट क्षोभशम होने से जो रिद्धि दुष्स्वप्नों को दूर करती है वह अघोर ब्रह्मचारित्व है। अथवा जिस रिद्धि के होने से महर्षि जन सब गुणों के साथ अघोर अर्थात अविनाशी ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, वह अघोर ब्रह्मचारित्व है। उच्च बरोबर करना, ब्रह्मचारित्व। अब 30 नंबर का सूत्र, नमो आमो सही पत्ताणम, अर्थ जिनका आम अर्थात अपक्वाहार औषधि रूपता को प्राप्त हो, उन जिनों को नमस्कार हो। तिलोय पन्नति में इसे आम औषधि कहा है। वहां लिखा है, जिस रिद्धि के प्रभाव से जीव पास में आने पर ऋषि के हस्त व पादादि के स्पर्श से ही निरोग हो जाते हैं, वह आमर्षौषधि है। आमर्ष औषधि। 31 नंबर, नमो खेलो सही पत्ताणम, अर्थ श्वेलौषधि प्राप्त जिनों को नमस्कार हो। विशेषार्थ, जिनका निष्ठीवन यानी थूक औषधि रूप अर्थात रोग निवारक होता है, वे मुनिराज श्वेलौषधि प्राप्त है। अब नंबर 18, पेज नंबर 18 पर आते हैं। नमो जल्लो सही पत्ताणम, जल्लौषधि रिद्धि प्राप्त जिनों को नमस्कार हो। विशेषार्थ, पसीने से मिले हुए धूली समूह रूप मल को जल्ल कहते हैं। जिन मुनियों का जल्ल औषधि रूप होता है वे जल्लौषधि प्राप्त जिन कहलाते हैं। नमो मिठो सही पत्ताणम, जिनका मल औषधि रूप परिणित हो गया है, उन जिनों को नमस्कार हो। जिनका मूत्र पुरुषादि मल रोग निवारक होता है वे विष्ठौषधि प्राप्त है। महान तपश्चर्या के प्रभाव से यह सामर्थ्य प्राप्त होती है। नमो सवो सही पत्ताणम, सर्वौषधि रिद्धि प्राप्त जिनों को नमस्कार हो। विशेषार्थ, जिन ऋषियों के अंग प्रत्यंग नख दंत केशादि स्पर्श करने वाले जल पवन आदि, यानी उनके अंगों का स्पर्श करने वाला जल या उसका पवन भी, पवन आदि जीवों के लिए औषधि रूप परिणत हो जाते हैं, वे सर्वौषधि प्राप्त जिन हैं। नमो मन बलिनम, मन बलधारी जिनों को नमस्कार हो। पेज नंबर है 18। अभी हमने 35 नंबर का सूत्र पढ़ा। विशेषार्थ, नो इंद्रियावरण यानी मन संबंधी जो ज्ञानावरण है उसको नो इंद्रियावरण कहते हैं। श्रुत ज्ञानावरण तथा वीर्यांतराय कर्म के क्षोभशम के प्रकर्ष से, यानी उसका अधिक क्षोभशम यानी उघाड़ ज्यादा होने से, अंतर्मूर्त में ही संपूर्ण श्रुत के अर्थ चिंतन में प्रवीण मनोबली है, उसको मनोबली कहा। वे तो श्रुत कैवल्य तो है ही है, परंतु अंतर्मूर्त में पूरा का अर्थ चिंतन में प्रवीण है, यानी श्रुत कैवल्य में भी और विशेषता बताई उसमें। नमो काय बलिनम, काय बलि जिनों को नमस्कार हो, विशेषार्थ वची रह गया, 36 नंबर रह गया, पढ़ते हैं। नमो वची बलिनम, वचन बलि जिनों को नमस्कार हो, विशेषार्थ। मन रसना तथा श्रुत ज्ञानावरण एवं वीर्यांतराय के क्षोभम के अतिशय से, यानी वो तो नौ इंद्रियावरण भी लिया, रसने इंद्रियावरण भी लिया, क्योंकि वो तो वचन में वो जीभ का भी काम है, इसलिए वो रसना लिया। जो अंतर्मूर्त में संपूर्ण श्रुत के उच्चारण करने में समर्थ है, ओहो, तथा निरंतर उच्च स्वर से उच्चारण करने पर भी जो श्रम रहित एवं कंठ के स्वर में हीनता रहित है, वे ऋषि वचन बलि है। क्या होगी ना उनकी, तो गणधरों की भी बात, वो तो सब जगह सब प्रकार से है ना, वचन बलि भी हो गए, मन बलि भी हो गए, काय बलि भी हो गए। नमो काय बलिनम, काय बलि जिनों को नमस्कार हो, विशेषार्थ। वीर्यांतराय के क्षोभम से उत्पन्न असाधारण शरीर बल होने से मासिक, चातुर्मासिक, वार्षिक आदि प्रतिमा योग धारण करते हुए भी, यानी जब प्रतिमा योग धारण करके वो तो कायोत्सर्ग में विराजमान होते हैं मुनिराज, महीने के लिए, छह महीने के लिए, वर्ष के लिए होते हुए भी जिन्हें खेद नहीं होता, वे मुनिवर काय बलि है। तिलोय पन्नति में कहा है, जिस रिद्धि के बल से वीर्यांतराय का उत्कृष्ट क्षोभम होने पर मुनिराज मास व चातुर्मास आदि कायोत्सर्ग करते हुए भी श्रम रहित होते हैं, तथा शीघ्र ही तीनों लोकों को कनिष्ठ अंगुली पर उठाकर अन्यत्र धरने में समर्थ होते, ओहो हो, तीनों लोग पूरे लोक करने वाले नहीं, कभी पन सामर्थ्य इतनी है कि तीनों लोगों को कनिष्ठ उंगली पर, ये समझ से हाँ, क्या कहते उसको, रंगुली, तचली, हाँ मराठी में करंगली कहते हैं, ऐसा करंगुली भी कहते हैं उसको, अंतिम जो ये वह कायबली नाम की रिद्धि है। नमो खीर सवीनम, अर्थ क्षीरस्रवि रिद्धिधारी जिनों को नमस्कार हो, विशेषार्थ। नीरस भोजन भी जिनके हस्तपुट में रखे जाने पर क्षीर गुण रूप परिणमन करता है, क्षीर यानी वो दूध समान हो जाता है, वा जिनके वचन क्षीण व्यक्तियों को दुग्ध के समान तृप्ति प्रदान करते हैं, वे क्षीरस्रवि है। तत्वार्थ राजवार्तिक में क्षीरास्रवी पाठ ग्रहण किया है। नमो सप्पिसवीणम, घृतस्रवी जिनों को नमस्कार हो, विशेषार्थ। वृक्ष भोजन भी जिनके करपात्र में पहुंचते ही घृत के समान शक्तिदायक हो जाता है, अथवा जिनका संभाषण जीवों को घृत सेवन के समान तृप्ति पहुंचाता है, वे घृतस्रवी है। नमो महुसवीनम, मधुस्रवी जिनों को नमस्कार हो, विशेषार्थ। जिनके हस्तपुट में रखा हुआ नीरस आहार भी मधुर रसपूर्ण तथा शक्ति संपन्न हो जाता है, अथवा जिनके वचन दुखी श्रोताओं को मधु के समान संतोष देते हैं, वे मधुस्रवी है। यहाँ मधु शब्द का तात्पर्य मधुर रस वाले, गुड़, खांड, शर्करा आदि से है, कारण उन सब में मधुरता पाई जाती है। नमो अमई सवीनम, अमृत स्रवी जिनों को नमस्कार हो, जिनके हस्तपुट में पहुंचकर कोई भी भोज्य वस्तु अमृत रूप हो जाती है, अथवा जिनकी वाणी जीवों को अमृत तुल्य कल्याण देती है, वे अमृत स्रवी हैं। नमो अक्षीण महानसानम, अक्षीण महानस रिद्धिधारी जिनों को नमस्कार हो। विशेषार्थ, लाभांतराय के क्षोभशम से, क्षोभशम के उत्कर्ष को प्राप्त मुनिवर्षों मुनीश्वरों को, फिर से पढ़ते हैं, लाभांतराय के क्षोभशम से, क्षोभशम के उत्कर्ष को प्राप्त मुनीश्वरों को जिस पात्र से आहार दिया जाता है, उससे यदि चक्रवर्ती का कटक भी भोजन करे तो उस दिन अन्न की कमी न पड़े, यह अक्षीण महानस रिद्धि है। देखो, वो तो हाथ से भोजन करते हैं, परंतु जिस पात्र से उसमें दिया जाएगा वो पात्र कभी खाली नहीं होगा। यानी चक्रवर्ती की उसमें पूरी सेना भी भोजन कर जाए तो भी वो ऐसा रहेगा, उसको कहते अक्षीण महानस। तिलोय पन्नति में कहा है, लाभांतराय के क्षोभशम से संयुक्त मुनिराज के भोजनांतर, यानी उनके वहां आहार होने के पश्चात भोजनशाला के अवशिष्ट अन्न में से जिस किसी भी प्रिय वस्तु का उस दिन चक्रवर्ती के कटक को भोजन कराने पर भी लेश मात्र क्षीण न होना अक्षीण महानस रिद्धि है। अब आते हैं नंबर 20 पर। नमो सव सिद्धाय दनानम, संपूर्ण सिद्धायतनों अर्थात निर्वाण क्षेत्रों को नमस्कार हो। और नमो वर्धमान बुद्धि ऋषिस्स, वर्धमान बुद्ध ऋषि को नमस्कार हो। नीचे दो नंबर क्या लिखा है, ओम ह्रीम अर्हम नमो वर्धमानानम, ओम ह्रीम अर्हम नमो सव्व साहूनम महति महावीर वर्धमान बुद्धि ऋषिनम। वर्धमान बुद्धि ऋषि कहा उनको, यानी उसके लिए अलग अलग जो उन्होंने रेफरेंसेस दिए हैं। हाँ, अर्थ है तो उन्होंने लिया है अन्य अन्य पुस्तकों में से। ये ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल केवल सूत्रों की रचना है, सूत्र हो गाथा हो वो ओरिजिनल में। यहाँ पर भी इस पुस्तक में जो लिखा है वो संपादक जो सुमेरु चंद्र दिवाकर, उन्होंने लिखा हुआ है। अब यहाँ भी अभी ये जो अधिक ये सारे सूत्र है, हाँ, क्योंकि एक एक सूत्र है, ओरिजिनल ही है सब। अर्थ वो उन्होंने अपने से अनेक अलग अलग ग्रंथों के आधार से उन्होंने वहाँ प्रस्तुत कर दिया है, और उसके मूल ग्रंथ में प्राकृत क्या है वो फुटनोट में दिया ही है। अब प्रकृति समुत्कीर्तन निरूपणा, यानी ये महाबंध अधिकार है, तो यहाँ बंध की चर्चा चलेगी, तो उसमें से वो प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध होता है। तो पहले में पहले प्रकृति क्या है, वो होती है, ये कहना वो समुत्कीर्तन है ऐसा कहेंगे। कौन कौन से उसको बताएंगे, मूल प्रकृतियों को बताएंगे, उत्तर प्रकृतियों को बताएंगे। तो यहाँ कहते हैं, इस महाबंध अथवा महाधवल शास्त्र का प्रारंभिक ताड़पत्र नंबर 27/1 नष्ट हो गया है, उसकी उसी रूप में पूर्ति होना असंभव है। आगे के वर्णन क्रम के साथ संबंध मिलाने की दृष्टि से मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण तथा अवधि ज्ञानावरण का संक्षेप में वर्णन करते हैं, कारण ग्रंथ में ज्ञानावरण पर आरंभ में प्रकाश डाला गया है। यहाँ क्या कहते हैं, जरा आगे का नंबर 25 निकालो पेज, वहां से एक्चुअली ये शुरुआत हो गई, जो एक लिखा है ना अयम संवत्सर पलिदोम वगैरह वगैरह, यानी वो उसके पहले पूर्व का अंश नष्ट हो चुका है, और वो जो अंश नष्ट हो चुका है उसके लिए उन्होंने, क्योंकि वहाँ अवधि ज्ञान की प्ररूपणा से शुरू है, इसलिए उसके पूर्व में आने वाले ज्ञानावरण दर्शनावरण की भी बात यहाँ उन्होंने लिख दी है। हम पढ़ेंगे इसको और फिर आगे बढ़ेंगे। जो त्रिकालवर्ती द्रव्य गुण पर्यायों को नाना भेदों सहित प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जानता है उसे ज्ञान कहते हैं। पहले में पहले ज्ञान की डेफिनेशन क्या है, तो जानता है वो ज्ञान है। तो किसको जानता है? त्रिकालवर्ती द्रव्य गुण पर्यायों को नाना भेदों सहित। वो प्रत्यक्ष जाने वो तो केवल ज्ञान है ही है, और परोक्ष में तो हम शुद्ध ज्ञान कह सकते हैं, है ना, उसे ज्ञान कहते हैं। या त्रिकालवर्ती जानते वो तो प्रत्यक्ष हो गया, और फिर परोक्ष ज्ञान भी होता है, वो जानता है वो ज्ञान है। उस ज्ञान का आवरण करने वाला ज्ञानावरण कर्म है। यह ज्ञान जीव का स्वभाव है। स्वभाव उसी को कहते हैं, वो किसी अन्य के कारण नहीं होता, और जो अनादि अनंत विद्यमान होते हैं स्वयं सिद्ध होता है। स्वभाव है वो परिपूर्ण होता है, उसमें कोई लिमिट नहीं, वो असीम होता है, अमर्यादित, और उसमें किसी की सहाय की जरूरत नहीं है। तो कहते हैं कि ज्ञान ये जीव का स्वभाव है। यह ज्ञान जीव का स्वभाव है, इसके द्वारा जीव स्व तथा अपूर्व वस्तु का व्यवसाय निश्चय करता है। व्यवसाय करता है नहीं, जानता है। ज्ञान के द्वारा क्या व्यवसाय होगा तो जानना होगा। यानी जीव स्व और अन्य चीजों को जान लेते हैं। वस्तु यानी द्रव्य सामान्य तथा विशेष धर्मों से समन्वित है, समन्वित यानी युक्त है। साकार उपयोग ज्ञान तथा निराकार उपयोग दर्शन कहलाते हैं। साकार का अर्थ पदार्थों के विशेषों को जान लेना, वह है साकार। और निराकार यानी उसमें पदार्थों में कुछ भेद किए बिना बस है इतना ग्रहण होना, उसको कहेंगे निराकार उपयोग, उसको दर्शन कहते हैं। ज्ञान तथा दर्शन जीव के पृथक पृथक गुण है। चित्त प्रकाश की बहिर्मुख वृत्ति को भी ज्ञान कहते हैं, और चित्त प्रकाश की अंतर्मुख वृत्ति को दर्शन कहते हैं। अलग अलग ग्रंथों में उसकी जो अलग अलग परिभाषा है वो सब यहाँ लिखी है। गोमरसार जीव कांड में लिखा है, सामान्य विशेषात्मक पदार्थों के भेद को ग्रहण न करके जो सामान्य ग्रहण स्वरूप मात्र का अवभासन है वह दर्शन है। इस दर्शन का आवरण करने वाला कर्म दर्शन आवरण है। ये पहले में पहले आठों ही कर्मों की बात यहां बच रही है, उसकी जो डेफिनेशन क्या है उसको बता रहे हैं। तीसरे नंबर पर वेदनीय को लिया जाता है। जब हम घाती अघाती भेद करते हैं तब मोहनी और अंतराय कहते हैं, परंतु यहाँ वेदनीय को पहले, क्योंकि वो सुख दुख में निमित्त है तो उसको पहले ले लिया जाता है तीसरे नंबर पर। तो जिसके उदय से देवादि गतियों में शारीरिक तथा मानसिक सुख की प्राप्ति होती है उसे साता कहते हैं। उसको जो भोगवावे तथा जिससे साता का वेदन करना है, करना भोगना होता है, वह साता वेदनीय। अश्विन में यहाँ लिखा है देवादि गतियों में शारीरिक मानसिक सुख की प्राप्ति होती है, ये कौन से गतियों में होता होगा? हाँ, क्योंकि साता का उदय तो चारों ही गतियों में, मानसिक भी है ना वहां पर। जिसके उदय का फल अनेक प्रकार के दुख है वह साता है। जो उसे भोगवावे अनुभवन करावे वह असाता वेदनीय है। जो जीव को मोहित करे वह मोहनीय कर्म है। भव धारण करने में कारण आयु कर्म है, जिसको भव विपाकी भी कहते हैं। इस जीव की नर नारकादि विविध पर्यायों में कारण नाम कर्म है। कुल परंपरा से प्राप्त जीव के उच्च अथवा नीच आचरण का कारण गोत्र कर्म है। इस जीव के दान लाभ भोग उपभोग तथा वीर्य में जो अंतराय बाधा डालता है वह अंतराय कर्म है। इन आठ कर्मों में ज्ञानावरण दर्शनावरण मोह यानी मोहनीय तथा अंतराय को घातिया कर्म कहते, घातिया कहो या घाती कर्म कहो, एक ही बात है। कारण ये जीव के अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख तथा अनंत वीर्य नामक गुणों का घात करते हैं। गुणों का घात करते न ये पर्याय प्रकट नहीं होने देते। ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य जीव के अनुजीवी गुण हैं। सिद्धों के अव्यावाद सुख का घात आठों ही कर्म करते हैं। यानी जब आप कहेंगे तो चार कर्म गए, अरिहंत भगवान को अव्यावाद सुख होगा, तो कहते नहीं, अभी वहां पर भी कर्म बाकी है तो अव्यावाद सुख नहीं है। प्रत्येक कर्म का कार्य जीव के विशेष गुण के घात करने का है, किंतु उन सबका सामान्य धर्म जीव के सुख गुण के भी विनाश करने का पाया जाता है। सामान्य से सभी कर्म सुख का विनाश करने वाले हैं, और प्रत्येक कर्म का अपना अपना विशिष्ट कार्य है। वेदनीय आयु, नाम तथा गोत्र ये प्रतिजीवी गुणों का नाश करते हैं। अनुजीवी गुणों का घात न करने के कारण इनको अघातिया कर्म कहते हैं। हाँ, फिर से देखो, देखो प्रत्येक गुण का अलग अलग कार्य है ना। स्पेसिफिक ज्ञानावरण का है तो ज्ञान पर घात करना, दर्शन का हो तो दर्शन का आवरण वगैरह, ये तो बता चुके। अब सामान्य से सभी कर्मों का कार्य क्या है? जीव के सुख का घात करना, सुख का, क्योंकि जब तक आठों कर्म नहीं जाते तो अव्यावाद अनंत सुख नहीं मिलता है। अनंत सुख तो प्राप्त हुआ केवली को, परंतु अव्यावाद सुख तो सभी कर्मों का घात होने पर होता है। इसलिए यहाँ कहा सभी का सामान्य कार्य क्या है? सुख का घात करना। देखो ये क्या कहते हैं, अनुजीवी गुणों का घात न करने के कारण इनको अघातिया कर्म कहते हैं। हमने पहले भी इसमें पढ़ा था, वो कथनचित घाती उसको कहेंगे, क्योंकि अनुजीवी गुणों का तो प्रतिजीवी का तो घात कर ही रहा है। चार अघाती कर्म है वो अनुजीवी गुणों का घात नहीं कर रहे, परंतु प्रतिजीवी का कर रहे हैं, घात तो हो ही रहा। वे कौन से है? वे क्रमशः अव्यामाद, यानी किस किस का कौन से प्रतिजीवी गुणों का घात हो रहा है? अव्यावाद, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व तथा अग्र लघुत्व गुणों का नाश करते हैं। चार घातिया का नाश करने वाले अरहंत भगवान में गुण चतुष्टय की अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति दिन वो प्रकट होते हैं। इसको क्या कहते हैं हम एक नाम से? अनंत चतुष्टय। तथा सिद्धों में कर्माष्टक के यानी आठ कर्मों के ध्वंस करने से आठ गुण व्यक्त होते हैं। तो ये गुण व्यक्ति कहने की पद्धति, ये सब पर्याय को यहाँ गुण कहा है। गुण तो सभी में है, जितने निगोद में उतने ही सिद्ध में है। यहाँ प्रकट होते का गुण प्रकट होने का ही अर्थ है उसके जो सामर्थ्य है वो प्रकट होना। हमने वो नियम सार में भी देखा था, केवल ज्ञान को भी वहां स्वभाव गुण कहा था और मतिशुद्ध ज्ञान को विभाव गुण कहा था, गुण कहा था पर्याय को। अनेक जगह बात आती है इससे। कर्मों के ध्वंस का अर्थ पुद्गल का अत्यंत क्षय नहीं है। क्या कहते हैं? पुद्गल का नाश नहीं होता है, कर्म ये उसकी पर्याय है। जिसको हम कहेंगे वो स्कंद रूप है, समान जाति द्रव्य पर्याय है, तो वो उसका विघटन होगा, कर्म रूप शक्ति उसकी नष्ट हो जाएगी, वो अकर्म रूप हो जाएगी, पुद्गल नष्ट नहीं होगे। कारण सत का अत्यंत विनाश नहीं हो सकता, पुद्गल द्रव्य है और द्रव्य का कभी विनाश नहीं हो सकता। पुद्गल की कर्मत्व पर्याय का नष्ट हो जाना अर्थात आत्मा के साथ उसका संबंध न रहना ही कर्मक्षय है। वो अन्य वर्गणा रूप हो जाते हैं। अब ज्ञानावरण कर्म की पांच प्रकृतियां हैं, आभिनिबोधि ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनःपरे ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। ये आवरण पंचक यानी पांच आवरण, आभिनिबोधि ज्ञान जिसको हम मति ज्ञान कहते हैं, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरे ज्ञान तथा केवल ज्ञान रूप ज्ञान की पांच अवस्थाओं को आवृत करते हैं। यानी वो नहीं होने देते। मिथ्यात्व के उदय से आभिनिबोधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान तथा अवधि ज्ञान को मत्य ज्ञान यानी मति अज्ञान, श्रुता ज्ञान यानी श्रुत अज्ञान तथा विभंग ज्ञान जिसको हम कु अवधि ज्ञान कहते हैं, इन तीन ज्ञानों को कु ज्ञान भी कहते हैं। ये तो प्रकृतियां है, इसी को कहते प्रकृति समुत्कीर्तन, वही यहां बात हो रही है। अभी आभिनिबोधिक शब्द कैसे हुआ? इंद्रिय तथा मन की सहायता से। ये आभिनिबोधिक ज्ञान कहो या मति ज्ञान कहो, बात एक ही है। उसका नाम इतना लंबा चौड़ा कैसे पड़ा मालूम है? आभि यानी इंद्रिया है, वो अभिमुख अपने विषय के सन्मुख होकर जानती है, इसलिए आभि नाम पड़ता है। नी क्यों आया? वो निश्चित, उसका विषय निश्चित है। जैसे चक्षु इंद्रिय का विषय क्या है? वर्ण। उसका विषय क्या है? वर्ण को वो जानेगी। स्पर्शन इंद्रिय का विषय क्या है? उस पुद्गल के स्पर्श गुण की जो पर्याय है, हल्का भारी रूखा चिकना वगैरह, उसको वो जानेगी। स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा आपको कौन सा वर्ण है वो पता नहीं चलेगा। तो यही कहते हैं कि उसका अपना अपना विषय निश्चित है। अभी यानी सन्मुख होकर जानती है, निश्चित उतने विषय को जानेगी, अन्य को नहीं जानेगी। वो नी अभी नी बोध है ने ज्ञान होना, उसको मति ज्ञान को ही आभिनिबोधिक ज्ञान कहते हैं। देखो यह इंद्रिय तथा मन की सहायता से, इसका अर्थ यह मति ज्ञान है ना, अभिमुख तथा प्रतिनियत यानी निश्चित पदार्थ को जानने वाला आभिनिबोधिक या मति ज्ञान कहलाता है। मति ज्ञान द्वारा गृहित अर्थ से, अर्थ है पदार्थ, यानी मति ज्ञान से हमें कुछ ख्याल में आया, यानी हमने जान लिया, इंद्रिय तथा मन के द्वारा हमने किसी चीज को जाना, तो उस अर्थ से जो अर्थांतर का बोध होता है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। बोध होता है यानी उस संबंधी ज्ञान हो जाता है। जैसे हमने शक्कर शब्द सुना, कौन से इंद्रिय से? कर्ण इंद्रिय से। क्या सुना? वो डब्बे वाली शक्कर सुनी के शब्द सुना? शब्द सुना, यानी कौन से अर्थ को ग्रहण किया? शब्द को ग्रहण किया। मति ज्ञान में हमने शब्द को जाना। यहाँ क्या लिखा है? मति ज्ञान द्वारा गृहित अर्थ, हमने मति ज्ञान के द्वारा कौन सा शब्द सुना? शक्कर। तो उस शब्द के द्वारा अर्थांतर का बोध होता है, वो शक्कर नाम के पदार्थ का हमको बोध होता है। आप कहेंगे ये तो जो सब मनुष्य वगैरह संगी जीवों में होगा, जो भाषा बोलते हैं, एक इंद्रियों में कैसा है? वो सुनते ही नहीं कुछ, परंतु वो स्पर्श के द्वारा जानते हैं। और ये ठीक या अठीक ऐसा जो बोध होता है उसका श्रुत ज्ञान है। क्योंकि हम देखते हैं हमारे घर में पौधे वगैरह रखे हैं कोई, तो सूर्य प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, तो ये कुछ अपने फेवरेबल है, इतना भी तो होता है ना उसके अंदर। और उसके जो रूट्स है वो तो नीचे की दिशा में बढ़ते हैं, पानी की तरफ चले जाते हैं, ये क्या है? तो उसमें भी वो तो वो बोध वहां पर भी चलता है। इसके लिए मन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एकेंद्रीय जीव भी मतिश्रुत ज्ञान वाले हैं। नहीं तो जब मन के द्वारा सोचा इसलिए, तो मन जिनके है वो मन भी उसमें निमित्त होता है। पांचों इंद्रिया और मन सबको लेना है, उसके द्वारा जो मति ज्ञान होता है उसके बाद, क्योंकि केवल वो शब्द से ही जानना चाहिए ना, ऐसा नहीं है, चिन्ह से भी नक्की कर सकते हैं। जिसको शब्द के द्वारा जो होता है उसको शब्दज कहते हैं, और जो चिन्हों के द्वारा होता है लिंगज कहते हैं। ऐसे दो प्रकार है उसके अंदर, उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। अब अवधि ज्ञान, द्रव्य क्षेत्र काल तथा भाव की अपेक्षा जिस प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय की अवधि या सीमा हो उसे अवधि ज्ञान या सीमा ज्ञान कहते हैं। ये मर्यादा है ना, मर्यादा वाला ज्ञान है, इसीलिए उसका नाम ही अवधि ज्ञान है। परकीय मन में स्थित पदार्थ को जो जानता है उसे मनःपरे ज्ञान कहते हैं। परकीय शब्द क्यों डाला? अरे अपने मन की बात जानेंगे तो उसको हम मति ज्ञान कहेंगे, मन के द्वारा जान रहे हैं। त्रिकाल गोचर सर्व द्रव्यों तथा उनकी समस्त पर्यायों को ग्रहण करने वाला केवल ज्ञान है। अब पहले उन्होंने सभी उत्तर प्रकृतियों के नाम बताए हैं, अब एक एक ज्ञानावरण की चर्चा करेंगे उसके। जो अभिनिबोधिक ज्ञानावरण कर्म है, पहले बताएंगे सब ये कर्म है, वो कर्म है, वो कर्म है, उसको समुत्कीर्तना कहते हैं। तो जो अभिनिबोधिक ज्ञानावरण कर्म है, यानी जो मति ज्ञानावरण जो है, वह 4, 24, 28 तथा 32 प्रकार का है। अवग्रह केवल 4 प्रकार बताए तो कौन से? अवग्रह, यहाँ अवाय तथा धारणा का आवरण करने वाला, वो कर्म भी 4 प्रकार का है। जैसे मति ज्ञान के 4 भेद बताएंगे, अवग्रह, यहाँ अवाय, धारणा, तो उसके कर्मों के भी 4 भेद करेंगे। अवग्रह का आवरण, यहाँ का आवरण, अवाय का आवरण, धारणा का आवरण, तो कहते उसका आवरण करने वाला अवग्रहावरण, इहावरण, अवायावरण तथा धारणावरण कर्म है। यानी मति ज्ञानावरण के अभी ये भेद की चर्चा चल रही, जितने हम मति ज्ञान के भेद करेंगे उतने ही उसके आवरण के भी भेद होंगे, ये कह रहे हैं। विषय और विषयी के सन्निपात के अनंतर क्या कहते हैं? विषय किसको कहेंगे? ज्ञान के द्वारा हम जिसको ज्ञेय को जानते हैं वो ज्ञान का विषय कहते हैं, और विषयी यानी जानने वाला, ज्ञान। तो विषय और विषय का सन्निपात, अभी यहाँ हमारी बात इंद्रिय और मन की चल रही है, तो उसका सन्निपात होना यानी उसका निकट आना, यथा योग्य जो कुछ होगा। यानी जैसे स्पर्शन इंद्रिय का विषय क्या है? हल्का भारी वगैरह जो कुछ है, तो उसका और स्पर्शन इंद्रिय का सन्निपात होना यानी उसका कॉन्टैक्ट होने पर, हमारी भाषा में। उसके पश्चात अनंतर पदार्थ का आद्य ग्रहण अवग्रह है, यानी फोरमोस्ट, पहले उस संबंधी जो ग्रहण होता है, ग्रहण यानी जान की बात है, तो उसको हम कहेंगे अवग्रह। इसका आवरण करने वाला अवग्रहावरण कर्म है। अवग्रह के द्वारा गृहित अर्थ के विषय में, देखो हम इसका विचार ऐसा कर सकते हैं ना, अलग अलग इंद्रिय के द्वारा, जैसे हम कहते हैं वो पदार्थ और विषय विषय का संनिपात होने पर भी ज्ञान हो ये कोई जरूरत नहीं है, नहीं समझे? जैसे संगी पंचेंद्रिय है, कर्णेन्द्रिय है, और वो शब्द टकराते हैं, टकरा तो रहे ना, और फिर भी सुनाई नहीं दे रहा है, तो उस संबंधी उसका अवग्रह भी नहीं हो रहा है ना, वहां पर अन्य इंद्रियों का चल रहा है। हम ऐसा भी सुनते हैं किसी के, अभी परसों कौन आए थे ना, वो भाई कब आए थे, शाम को आए थे कि सुबह आए थे? हाँ, मद्रास वाले, वो जाने के आप सब लोग गए तो कह रहे कि मुझे कुछ विशिष्ट टेस्ट, 2 टेस्ट कुछ समझती नहीं है, आऊंगे तो कुछ समझता नहीं है, तो उस संबंधी उसके, हाँ, यानी 5 रस कहेंगे तो उसमें से 2 रस का ज्ञान ही नहीं होता है, और बिना कुछ खाए कुछ विशिष्ट अन्य टाइप की टेस्ट आ जाती है, यानी उसको क्या है उस संबंधी उसका कलर ब्राइंड भी होते हैं ना, कि विशिष्ट कलर उनको नहीं दिखता है उसमें से, तो उस संबंधी उसका अवग्रह आवरण है, ग्रहण ही नहीं हो रहा है उसका। अभी जो कुछ कुष्ठ रोगी वगैरह होते हैं उनके टेस्ट बर्ड्स जो कुछ है वहां, तो उनको टच करने पर, पिंच करने पर भी उनको सेंसेशन नहीं होती, तो ये जो है उसको हम इस तरह से सोच सकते हैं उसके। तो विषय और विषय के सन्निपात के अनंतर पदार्थ का आद्य ग्रहण अवग्रह है, इसका आवरण करने वाला अवग्रहावरण कर्म है। आद्य ने प्राथमिक, पहले में, पहले सौ प्रथम स्टार्टिंग में अवग्रह के द्वारा गृहित अर्थ के विषय में, अभी अवग्रह के द्वारा जाना, गृहित है ना, वो जान लिया, उसके विषय में विशेष जानने की इच्छा के बाद, यानी अवग्रह से जाना तो उसमें उत्सुकता हुई उसके, और विशेष जानने की, उसकी विशेषता जानने की इच्छा हुई, भवितव्यता, प्रत्यय रूप ज्ञान को इहा कहते हैं, प्रत्यय ने उसका कारण, कारण रूप जो ज्ञान है, यानी आगे की इच्छा हुई ना और जानने की इच्छा हुई, ऐसे ज्ञान को इहा कहते हैं। उसका आवारक कर्म इहावरण कर्म है। इसके अनंतर भाषा वेश आदि का विशेष ज्ञान होने से जो संशय आदि का निराकरण करके निर्णय रूप ज्ञान होता है वह अवाय है। जैसे किसी व्यक्ति विशेष को देखा तो देखकर हम निर्णय करने जा पहले, अरे कौन है जरा ये सब, तो फिर चेहरे में से उसके पहराव से, अरे साउथ इंडियन है क्या, कौन है क्या, कौन से अन्य देशवासी कौन है, ये तो हम उसके चेहरे वगैरह से निर्णय कर लेते हैं। तो उसको कहेंगे निर्णय रूप ज्ञान है, उसको अवाय कहते हैं। उसका आवारक अवायावरण कर्म है, अवाय को आवरण करने वाला, यानी निर्णय तक नहीं पहुंचता वो। अवाय ज्ञान के विषयभूत पदार्थ के कालांतर में स्मरण का कारण धारणा ज्ञान है। देखो कालांतर में स्मरण होना, वो स्मरण हम उसी को कहेंगे जो बातें संस्कार रूप से हर ज्ञान की पर्याय में चल रही है। इसको कहेंगे शास्त्र में यह है कि संस्कार के कारणभूत ज्ञान को धारणा कहते हैं, यानी जब जानने का कार्य हुआ तब तक वो धारणा तक पहुंचा है, जिसको हम कहें हम अपने मोबाइल में सेव कर दिया, तो सेव किया तो आप फिर उसको निकाल सकते हैं, अगर सेव नहीं किया तो ऐसे चले जाता है। ऐसे धारणा तक अगर पहुंचा है तो कालांतर में उसका स्मरण हो सकता है। तो धारणा के बाद जो चलती है धारा उसकी हर ज्ञान की पर्याय में, उसको संस्कार कहते हैं। इसलिए क्या कहा, अवाय ज्ञान के विषयभूत पदार्थ के जिसका निर्णय हो चुका है और कालांतर में भी उसको स्मरण कर सकते हैं, उसको धारणा ज्ञान कहते हैं। उसका आवारक धारणावरण कर्म है, आवरण करने वाला। आवरण शब्द डाले ना हमने हर एक में, ज्ञानावरण के हर जितने ज्ञान के भेद है उतने उसके आवरण के भेद है, उसको आवारक आवरण करने वाला कर्म कहा। अब हमने अवग्रह देखा था, तो अवग्रह के दो भेद याद है आपको, ज्ञान के अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह। देखो अवग्रहावरण कर्म के अर्थावग्रह आवरण तथा व्यंजनावग्रह आवरण कर्म, ये दो भेद हैं। अव्यक्त पदार्थ का ग्रहण करना व्यंजनावग्रह है, यह इंद्रियों से संबद्ध अर्थ का होता है। क्या कहते हैं, यानी जो ग्रहण है वो अव्यक्त है, अभी व्यक्त नहीं हुआ, अव्यक्त रूप से उसका ग्रहण हो गया है, यह इंद्रियों से संबद्ध अर्थ का होता है, यानी इंद्रियों से प्राप्त भी कहते हैं, इंद्रियों के कांटेक्ट में आए इसका भी उसका अर्थ करते हैं। दो प्रकार के इसका अर्थ किया जाता है, अभी प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि आपने गौर किया होगा हम किचन में काम करते हैं, कभी कभी वो तेल का उबलते हुए तेल का छींटा आके यहाँ गिर रहा है और देखते हम गिरा है वो देख रहे हैं, यानी चक्षु इंद्रिय के द्वारा ये डायरेक्ट ज्ञान होता है, परंतु स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा ज्ञान करने में कुछ सेकंड चले जाते हैं, फिर उसके वो तो जलन चालू हो जाती है। वो आज पहले क्या हुआ था, अव्यक्त ग्रहण कहेंगे उसको, इंद्रियों से तो वो सन्निकट हो ही गया था, परंतु वो जो कुछ ग्रहण है वो अव्यक्त रूप से हो गया था। इसके विपरीत स्वरूप वाला अर्थावग्रहण है, जो अव्यक्त है वो बाद में व्यक्त तो हो ही जाता है ना। हाँ, तो पहले में पहले चक्षु और मन को छोड़कर अन्य चार इंद्रियों के द्वारा पहले वो व्यंजनावग्रह होगा और बाद में अर्थावग्रह होगा। व्यंजनावग्रह का आवारक व्यंजनावग्रह वरण कर्म है तथा अर्थावग्रह का आवारक अर्थावग्रहावरण कर्म है। व्यंजनावग्रह चक्षु तथा मन को छोड़कर शेष स्पर्शन रसना घ्राण तथा श्रोत्र इंद्रिय से होता है, अतएव इसके स्पर्शनेन्द्रिय व्यंजनावग्रह वरण कर्म, देखो इतना लंबा चौड़ा नाम है, रसना इंद्रिय व्यंजनावग्रह ग्रह वरण कर्म, घ्राणेन्द्रिय व्यंजनावग्रह वरण कर्म तथा श्रोत्रेन्द्रिय व्यंजनावग्रह वरण कर्म, ये चार भेद होते हैं। हम कभी किसी चेस लेना है तो जीभ पर रखते हैं थोड़ी, बाद में उसको कंफर्म करते हैं ना, पहले रखते ही उसका ज्ञान नहीं होगा, तो इसको कहेंगे पहले में पहले वो अव्यक्त ग्रहण होता है, फिर वो व्यक्त ग्रहण हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, अभी जो बीमार है या कुछ है उसको तो उसका स्पर्शन, जहां रसना इंद्रिय वहां स्पर्शन तो भी तो है ना, वो केवल ठंडा गर्म समझता है, उसकी टेस्ट ही नहीं समझते उसको, यानी उसको रसना इंद्रिय संबंधी उसका वो तो आवरण चल रहा है वहां पर। हाँ, देखो 24 ऐसे हुए, वो ज्ञान के जितने भेद है, पहले में अवग्रह यहाँ वाय धारणा लिए, अब उसमें 6 × 4, 6 क्या होते हैं, किसके द्वारा जाना, 5 इंद्रिय और मन, 5 इंद्रिय और मन हरेक के अवग्रह यहाँ वाय धारणा हो जाएगी, तो कितने हो गए, 24 हो गए ना। अब उसमें कहते कि 28 कैसे हुए, 4 के द्वारा तो व्यंजनावग्रह भी हुआ था, तो उसमें व्यंजनावग्रह फिर अर्थावग्रह फिर अवाय फिर धारणा, यानी वो 4 ऐड कर दिए, किसके लिए, स्पर्शन रसना ग्रहण और श्रोत्र के लिए, यानी 24 × 4 = 28 हो गए। और हमने 32 के लिए लास्ट टाइम भी ऐसा राउंड कर दिया था, 32 कैसे निकाले उन्होंने, ना ना 24 तो सबके होते ही है, ये 6 यानी पांचों इंद्रिय और मन के द्वारा तो अर्थावग्रह तो होते ही होते हैं, इन एडिशन स्पर्शन रसना उनके क्या होते हैं, उनके पहले व्यंजनावग्रह होकर फिर अर्थावग्रह होता है, इसलिए वो 4 ऐड कर दिए, इसलिए 28 हो गए। बत्तीस लास्ट टाइम भी हमने उसको राउंड करके रखा था कि 32 कैसे निकाले उन्होंने, क्योंकि और तो कुछ उसमें अन्य भेद नहीं होते। उसके बाद उसमें हम कहते कि विषयों के भेद से, जैसे एक विद बहु बहुविध, ये जो 12 विषय है, तो ये हर एक को 12 से गुणा कर तो उसके टोटल भेद हो जाएंगे, यानी 28 को अगर हम 12 से गुणा करते हैं तो उसके टोटल भेद मिल जाते हैं, 336 होते हैं ना मति ज्ञान के भेद। अब हम आए हैं पेज नंबर 22 पर, देखो ये दूसरा पैराग्राफ पढ़ना है 22 नंबर के पेज पर। अर्थावग्रह व्यक्त वस्तु का ग्राहक होने के कारण 5 इंद्रिय तथा मन के द्वारा होते, सभी के द्वारा तो अर्थावग्रह तो होता ही होता है, इस कारण उसके आवारक स्पर्शन रसना ग्रहण चक्षु तथा श्रोत्रेन्द्रियावरण कर्म और 9 इंद्रियाव कर्म है, यानी 5 इंद्रिय के अपने अपने कर्म और मन का अपना कर्म, जिसको 9 इंद्रियावरण करते हैं। हाँ, तो यहाँ अवाय तथा धारणा ज्ञान भी 5 इंद्रिय तथा मन के होने के कारण अर्थावग्रह के समान प्रत्येक 6-6 भेद वाला है, यानी अर्थावग्रह भी 6 भेद वाला, यहाँ भी 6 भेद वाला। इस कारण व्यंजनावग्रह के 4 भेदों में अर्थावग्रह आदि के 24 भेदों को मिलाने से 28 भेद हो जाते हैं, अतएव मति ज्ञानावरण कर्म के भी 28 भेद हो जाते हैं। इसके बहुविध एकविध क्षिप्र अक्षिप्र उक्त अनुक्त ध्रुव अध्रुव निश्रुत अनिश्रुत, इन 12 प्रकार के पदार्थों को विषय करने के कारण, यानी बहु अनेक पदार्थ है उसको बहु कहते हैं, और अनेक प्रकार के पदार्थ है उसको बहुविध कहते, इस तरह से उसको समझना है। क्षिप्र का अर्थ होते जल्दी, शीघ्र वाला, और क्षिप्र यानी स्लो, उक्त यानी बताया हुआ या उक्त अन्य इंद्रियों के द्वारा भी उक्त अनुक्त होते हैं, ध्रुव अध्रुव समझ सकते हैं, निश्रुत अनिश्रुत यानी ढका हुआ है कि खुला है, इस तरह से। तो ये विषयों के भेद है, ज्ञान के जो विषय है पदार्थ है उनके भेद है, तो उनके भेद से ज्ञान के भी भेद करने में आते हैं। तो ये हर एक में 12 प्रकार हो गए, तो 28 को 12 से गुणा करने पर 336 भेद मति ज्ञान के हैं। अतएव मति ज्ञानावरण कर्म के भी 336 भेद होते हैं। वहाँ जो 32 लिखा है ना, वहाँ 336 होना चाहिए। लास्ट टाइम क्या था, 28 के बाद 336। ये गलती से 32 पड़ा है वहां पर। तो ये 22 पेज पर हमने मति ज्ञानावरण के सब भेदों को देख लिया। अब श्रुत ज्ञानावरण की बात कर रहे हैं। मति ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ से पदार्थांतर का ग्रहण करना श्रुत ज्ञान है। वह नित्य शब्द निमित्तक है अथवा अन्य निमित्तक है, ऐसी शंका का निराकरण के लिए उस श्रुत ज्ञान को मति पूर्वक कहा है। यद्यपि श्रुत ज्ञान पूर्वक भी श्रुत ज्ञान होता है। क्या कहा, एक तो मति, जैसे हमने शक्कर शब्द सुना तो हमें वो शक्कर सफेद होती है वो ख्याल आया, तो ख्याल आने के बाद उस पूर्वक और भी श्रुत ज्ञान होगा, अरे मुझे तो शक्कर लानी है, खलास होने को आई है, या अभी शक्कर बहुत महंगी होगी, यानी वो उसके परंपरा चलती है विचारों की। पहले मति ज्ञान हुआ था, उसके बाद श्रुत ज्ञान में से श्रुत ज्ञान चला, ये हो सकता है। फिर भी श्रुत ज्ञान के मति पूर्वकत्व में बाधा नहीं आती। तो श्रुत ज्ञान मति पूर्वक होता है, इसका तात्पर्य इतना है कि प्रत्येक श्रुत ज्ञान के प्रारंभ में मति ज्ञान निमित्त हुआ करता है। पश्चात मति पूर्वकत्व का कोई नियम नहीं है। स्टार्टिंग हुआ श्रुत ज्ञान तब उसके पहले मति ज्ञान था, बाद में कोई मति ज्ञान होना चाहिए जरूरी नहीं है। अब उस श्रुत ज्ञान के शब्द जन्य तथा लिंग जन्य दो भेद, मैंने बताया ना, शब्द ज कहो या लिंग ज, यहाँ तो जन्य शब्द आया उसी अर्थ में। अक्षरात्मक तथा अनक्षरात्मक रूप से भी उसके दो भेद कहे जाते हैं। श्रुत ज्ञान को अक्षरात्मक या शब्दात्मक मानना उपचरित कथन है। क्या कहा, ये जो हम द्रव्य श्रुत कहते ना उसको श्रुत कह देते हैं, और वो अक्षरों से बना है, और अनक्षरात्मक यानी कौन से, वो पर्याय पर्याय समास वगैरह वो अनक्षरात्मक है, परंतु उसको अक्षरात्मक अनक्षरात्मक कहना ये उपचार है। एक्चुअल है वो ज्ञान के भेद है ना, वो शब्द नहीं है, परंतु यहाँ ग्रंथों को हम श्रुतक कह देते हैं, ये उपचार का कथन है। श्रुत ज्ञान का कारण प्रवचन है, इससे प्रवचन को भी श्रुत ज्ञान कह दिया है ना। प्रवचन जिनेन्द्र भगवान के वचन है। अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के असंख्यात भेद है। अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान कौन सा है, जो अक्षर के नीचे वाले जो है। श्रुत ज्ञान के भेद याद है, पर्याय पर्याय समास, अक्षर अक्षर समास, जो अक्षर के ऊपर के सारे अक्षरात्मक भेद है, अंग और पूर्व तक सब। और अनक्षरात्मक वो पर्याय और पर्याय समास वाले। अरे पण पर्याय समास में असंख्यात लोग बार षट्स्थान वृद्धि के स्थान है, खाली दो नहीं है। तो क्या कहा, उसमें असंख्यात भेद है। देखो अनक्षरात्मक पर्याय पर्याय समास है,
अक्षर में तो सब,
अक्षर में अक्षर से लेकर ऊपर वो तो संख्या थी हो गई ना, कितने भी ज्यादा, क्योंकि सारे जो जिनवाणी के जो अक्षर है अपुनरुक्त अक्षर भी कहेंगे हम, इकट्ठे माइनस वन होते हैं, आपको याद है ना, सारे कॉम्बिनेशन वाले। पेज नंबर है 22। अभी अभी हमने मति ज्ञानावरण के भेद देखे 336। जितने ज्ञान के भेद है उतने आवरण के भी भेद है। अब यहाँ शुद्ध ज्ञानावरण की प्ररूपना चल रही है 22 नंबर के पेज पर। नीचे का पैराग्राफ हम पढ़ रहे थे, शुद्ध ज्ञान किसको कहते हैं, जो मति ज्ञान पूर्वक होता है, एक बात। अब उसके दो भेद बताए, शब्द जन्य यानी मति ज्ञान से हमने शब्द को जाना, या मति ज्ञान के द्वारा कोई चिन्ह को जाना, क्योंकि मति ज्ञान यानी पांचों इंद्रियों के द्वारा हम जो वस्तु का ग्रहण करते हैं उसमें जो उसका कोई स्पर्श जाना, उसका कोई टेस्ट जाने, उसके द्वारा हम निर्णय करते हैं, उसको शुद्ध ज्ञान होता है। जैसे हमने कोई टेस्ट की, अरे ये तो बगड़ा हुआ, ऐसा स्वाद लगता है, ये अच्छा नहीं, खाने योग्य नहीं, ये जो बातें हुई वो शुद्ध ज्ञान हुआ उसका। या जो एक इंद्रिय द्विंद्रिय भी, ये वो द्विंद्रिय भी कोई उसको रोकने की कोशिश करे, अरे यहाँ कुछ डेंजर है, तो मार्ग बदल कर चला जाता है, उसको तो मन नहीं है, फिर भी उसके श्रुत ज्ञान है। ये मति श्रुत ज्ञान तो चलता ही रहता है। तो हम नीचे का पैराग्राफ पढ़ रहे थे, शब्दजन्य और लिंगजन्य। उसमें भी शब्दजन्य वो अक्षरात्मक अनक्षरात्मक हो जाता है, और जो हम द्रव्य श्रुत कहते ना, ये हमारे द्रव्य श्रुत है, जिनवाणी है, उसको भी श्रुत कहना ये तो उपचार है। एक्चुअल है वो ज्ञान के भेद, पर शब्दों को भी श्रुत कह देते हैं, ये उपचार है। श्रुत का इनका कारण प्रवचन है, इससे प्रवचन को भी श्रुत ज्ञान कह दिया, ये कहना चाहते हैं। ये जो द्वादशांग श्रुत कहते हैं ना, ये तो उपचार है, उसमें श्रुत का उपचार कर दिया। अब अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के असंख्यात भेद है, जिसको हम पर्याय और पर्याय समास कहते हैं। अपुनरुक्त अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के संख्यात भेद है। अपुनरुक्त अक्षर जिसको रिपीट नहीं करना, एक बार एक अक्षर को गिनना, तो वो कैसे हो गए, तो स्वर और व्यंजन मिलकर पूरे 64 होते हैं, और उसमें उसको सिंगल रखना, फिर द्विसंयोगी भंग, तीन संयोगी भंग, चार संयोगी भंग, 64 संयोगी भंग तक चले जाते हैं, और इन सबके टोटल करेंगे तो होते हैं सब अपुनरुक्त अक्षर। नीचे लिखा देखो, 33 व्यंजन, 27 स्वर। व्यंजन समझते ना, क ख ग ग ग च छ झ ञ, वो सब व्यंजन, और स्वर में अ आ आ ऐसे वो तीन तीन होते ह्रस्व दीर्घ और प्लुत के अर्थ में, तथा चार अयोग वाह, वो क प ऐसे कोई होते हैं ना, वो अम वगैरह, उसको अयोग वाह कहा, योग वाह भी कहते हैं, अयोग वाह भी कहते हैं, मिलकर कुल 64 मूल वर्ण होते हैं। वो है प है क है ऐसा कुछ, ऐसे उसको अलग से चिन्ह करके बताते हैं ना। हाँ, नीचे लिखा है क्या, आपको देखना है तो उसमें से जीवकांड में से देखना पड़ेगा मुझे, जरा वो पहली पुस्तक देना जीवकांड की। लेफ्ट साइड में, हाँ जीवकांड, हाँ यू लिखा है ना, चार योग वह का अयोग, उसी अनुस्वार विसर्ग, उसके चार भेद है। अनुस्वार बिंदी देते हैं ना, एक मिनट कहाँ गया ये, 33 व्यंजन 27 चार अयोग वह जो है, उस अनुस्वार विसर्ग जिह्वामूल्य यानी क क ऐसे यहाँ से जो उच्चार होता है वो उन्हें फॉर एग्जाम्पल कह कहा है उसको जिह्वामूल्य कहते हैं। जिह्वामूल्य यानी कह करके उनको आगे ऐसा साइन उन्होंने किया है
क
लिख के उसको विशेष साइन बताइए आगे जरा मुझे वो देना। जिह्वामूल्य का उन्होंने कैसे लिखा देखो अनुस्वार तो समझते ना बिंदी विसर्ग ने अह आता है दो, दो और ये कह करके उन्होंने जिह्वामूल्य के लिए ऐसे लिखा जीवा कह लिखकर उन्होंने जिह्वामूल्य लिखा है हाँ क्योंकि वो तो अह उच्चार करो और कह उच्चार करो यहां से निकलता है ना गले से। और उपधमानीय पह 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 यानी जीभ से पह देखो कह गले से होता है इसे जीवे के मूल से और पह कहने से ओठों से होता है यानी अह है वो विसर्ग है कह है वो जिह्वामूल्य है पह है वो उपधमानीय है उपधमानीय हाँ उपधमानीय 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 स्वर में आ आई वो सारे स्वर है ना हाँ 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 वो सारे स्वर अ आ इसे आ आ ई ई ई उ इस तरह से ए ए और ए उसको और खींचते हैं ना उसको ये चार देखे ना ये सब मिलकर 64 हो गए कुल 64 मूल वर्ण होते उसको वर्ण कहते हैं। इन 64 वर्णों के संयोग से संयोग कैसे गए पहले पहले प्रत्येक अक्षर लिखना फिर उसके डबल करना जैसे एबीसी होगा तो ए बी ए सी बी सी ये क्या हुआ उसका हाँ द्विसंयोगी भंग हो गए तो इनके संयोग से ये 20 अंक प्रमाण अनुपूर्ण ये इकट्ठे माइनस वन होते हैं ये कैसे निकाले 64 के संयोगी भंग कैसे होते हैं हमारे पास अगर तीन कोई संख्या है अब ये हमने आपको बताया था ए बी और सी तो ए बी और सी के संयोग कैसे होते जरा पहले हम देखते ए बी सी के हर एक को सिंगल सिंगल रखो वो तीन भंग तो ये हो गए पॉसिबिलिटीज फिर ए बी इसको इसको लेना ए सी और बी सी ये तीन हो गए तीन तीन छः हो गए और ए बी सी वाला एक भंग होगा ये सात हो जाएंगे जहाँ तीन ही अक्षर लिए तो सात भंग हो जाते हमारे पास कितने हैं तो 64 है पर ये कैसे निकालना ये तो छोटे में हम देख सकते कितने संयोग हो सकते हैं तो कहते ये तीन है ना तो तीन बार दो दो लिखो आपस में गुणा करो तो आठ हो जाते हैं और माइनस वन करो इतने ही भंग हो गए ना कम हो गए ना ज्यादा हो गए। अब यहाँ अगर हम कुछ ए बी सी डी चार होते तो दो गुना दो गुना दो गुना दो 16 माइनस से 15 हो जाते भंग हमारे पास 64 है तो दो 64 बार लिखो और माइनस वन करो तो 64 बार दो लिखने से कौन सी संख्या आती है जिसको हम इकट्ठी कहते हैं क्योंकि देखो दो बार दो लिया तो चार आए, चार बार दो लिया सोलह आए, फिर आठ बार लिया दो सौ छप्पन आए, सोलह बार दो लिया पन्नठी आई, बत्तीस बार लिया बादल आया, चौसठ बार लिया इकट्ठी आई। ये हमने द्विरूप वर्ग धारा में देखे थे, आपको याद होगा। ये दो का वर्ग चार है, चार का वर्ग सोलह है, सोलह का वर्ग दो सौ छप्पन, उसका वर्ग पन्नठी, उसका वर्ग बादल, उसका वर्ग इकट्ठी। तो जो हमने जो चौसठ कहा उसको क्या कहेंगे, अर्धच्छेद। ये चार संख्या दो बार दो से गुणा करने से आती है, इसका अर्धच्छेद दो है। चार बार दो लिख के गुणा करने से सोलह आता है, इसका अर्धच्छेद चार है, इसका अर्धच्छेद आठ है। पनट्ठी का सोलह है, बादल का बत्तीस है और इकट्ठी का चौसठ है। तो चौसठ का जो सारे संयोगी भंग लेना है तो उसमें इकट्ठी माइनस वन करना तो हमें सारे ही जिनवानी के अपुनरुक्त अक्षर आते हैं। पुनरुक्त कितने हो गए इमेजिन करो आप, ख्याल में आती है बाकी। तो वो इन्होंने यहां पर लिखा है, देखो अभी वो कितने 20 अंक प्रमाण है ना, तो 20 अंक प्रमाण है तो उसको कैसे गिनेंगे हम इसको, देखो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस है, यानी उसको हम ये सड़सठ हजार चवालीस हजार तिहत्तर जो है ना उसको हम कोड़ा कोड़ी कहेंगे। यानी हम ऐसा कहेंगे ना तो इसको गिनेंगे कैसे, यानी उसको ऐसे ही बता देना एक आठ चार चार छ सात चार चार शून्य सात तीन सात शून्य नौ पाँच पाँच एक छः एक पाँच। अगर एक छः लेते लास्ट में तो इकट्ठी होती है, इकट्ठी नहीं एक और आठ से शुरुआत होती है, इसके इसका नाम है इकट्ठी। तो 20 अंक प्रमाण अपुनरुक्त अक्षर होते हैं। उपर्युक्त अक्षरों में अभी 1634 करोड़ तिरासी लाख सात हजार आठ सौ अट्ठासी इन एकादश अंक प्रमाण अक्षरात्मक मध्यम पद का भाग देने पर, देखो ये जो द्वादशांग हमारे श्रुति की रचना हुई है वो तो पदों में हुई है, तो कितने अक्षरों का एक पद कहलाता है उसको मध्यम पद कहेंगे। ये जो 1634 करोड़ तिरासी लाख सात हजार आठ सौ अट्ठासी ये जो इतने अक्षरों की एक उसका पद होता है, और ऐसे ऐसे पदों में उनकी रचना, जैसे आचार अंग सबसे पहला छोटा अंग है तो 18,000 पदों का है वो, तो उसमें कितने अपुनरुक्त अक्षर हो गए है ना। तो मध्यम पद का भाग देने पर लब्धि रूप में प्राप्त संख्या प्रमाण अंग प्रविष्ट पद होते हैं। अंग प्रविष्ट क्यों कहा, क्योंकि हमने जो इकट्ठी माइनस एक इतने अक्षर लिए उसको ये पद वाले अक्षरों से भाग दिया तो जो फुल फिगर आ गई उसको कहेंगे अंग प्रविष्ट, यानी वो तो उसमें से वो 12 अंग बने हैं, और जो बच गए हैं उसके हम अंग बाह्य जिसको हम 24 प्रकीर्णक कहते हैं उसकी रचना हुई। तो कहते हैं कि अंग प्रविष्ट है जो द्वादशांग यानी 12 अंग आचार अंगादि के नाम से ख्यात है, यानी वो है ना पहला आचार अंग दूसरा सूत्र कृतांग वगैरह वगैरह हम देखते हैं वो सब उसमें से बने हैं। भाग देने से शेष बचे हुए अक्षरों को अंग बाह्य कहते हैं। तो ये पहले में पहले अंग कितने द्वादशांग के पद कितने हुए 112 करोड़ कुछ होते हैं ना सारे टोटल पद, मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्ट उसकी फिगर। हाँ नहीं, हाँ मिल जाएगा इसमें। देखो ये पूर्व है, पहले अंग की बात। पाँच छः मिनट है ना अभी। पहले पूर्वों की बात है, अंगों की बात कहाँ गई। हाँ मिला। देखो ये आचारांग है, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग, नाथ धर्म कथा या उपासकाध्ययन अंग सातवा, अंतकृत दशांग, अनुत्तर उपपादिक दशांग, प्रश्न व्याकरण अंग दसवा, ग्यारहवा विपाक सूत्रांग और बारहवा जो दृष्टिवाद है उसमें वो पांच भेद है, परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। उसमें से वो चौदह पूर्व होते हैं। और ये जो ये बाद जाने पर जो बचे ना अक्षर, उसमें से वो अंग बाह्य श्रुतों की रचना हुई। हाँ हाँ, चौबीस होते हैं, वो चौबीस होते हैं। हाँ हाँ, टोटल संख्या बतानी है ना आपको, टोटल नहीं, 112 करोड़ होते हैं ना। जिनवाणी में जल्दी मिलेगा, परंतु अभी हाँ यहाँ पर भी लिखे है। हाँ लिखे ना, सब सब है। देखो पहले अंग वायुओं की प्रकीर्णकों के अक्षर बताती हूँ। शेष बचे हुए अक्षर है ना पेज नंबर 23 पर, उनकी संख्या लिख के रखो। दोनों ही मिले यहाँ पर मुझे, वो है 801 8 करोड़ अंग बाह्य चे टोटल 8.01 यानी 8 करोड़ 1 लाख, फिर 08 8 8 0 8 175, फिर से 8 करोड़ 1 लाख 8,000 175। और टोटल पद हमको जानने थे, द्वादशांग के टोटल पद, वो 112 करोड़ 83 लाख 58,000 और 5, यानी 112.83.58005 ये द्वादशांग के पद। और बाकी अक्षर रहे वो 8 करोड़ 1 लाख 8,000 175, उसमें से वो 24 जो हो गए वो अंग बाह्य की रचना हो जाएगी, उसको प्रकीर्णक कहते हैं। 24 प्रकीर्णक उसमें से हो गए, 12 के 12 टोटल, 12 अंगों के टोटल पद है, अक्षर है टोटल, उनमें से ये 24 प्रकीर्णक बने अंग बाह्य के। बाकी चर्चा हम कल करेंगे। कल वो आपके जो दिया है ना आपके पास महाबंध के त्रुटि तांश, वो भी लाना और छठी पुस्तक भी लाना। शुरुआत का कुछ नहीं, अरे स्कूल के बच्चों को इतना देते हो, अरे अभी इससे घबराते क्या? यंग है, अरे कहा के एजड हो गए। चलो यही रुकेंगे हम, ये 23 पेज से कल पढ़ेंगे हम। चावानी के ज्ञान ते सूझे लो खालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत।